તારીખ 3/6/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન.
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 254 ચાલતા હૈ. વિષય ચલા तो जो मुमुक्षुता है वो कहाँ से पहचानी जाती है, मुमुक्षुता कहाँ से पहचानी जाती है, उसका क्या लक्षण है? लक्षण वो है कि जो अपना दोष अपक्षपात रूप से देखता है, यही मुमुक्षुता का लक्षण है. क्यों? कि जिसको दोष से छूटना है उसको अनादि से जो दोष दृष्टि से दोष का बचाव करना, दोष की सुरक्षा करना, यह कार्य पद्धति हो गई है, इसको छोड़नी पड़ेगी. दोष टिकने का कारण यही है कि जिस दोष को आधार मिलता है, जब तक हमारी आत्मा हमारे दोष को आधार देती है तब तक ये दोष तो जाने वाले नहीं हैं. दोष निराधार हो जाएंगे तो चले जाएंगे, पर निराधार कब होंगे? कि जब छूटने का निर्धार हो जाएगा कि हमको एक कण मात्र भी दोष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए. और इसके लिए जो सब कुछ करना है हम तैयार हैं. और अपना दोष अपक्षपात रूप से देखने से स्वच्छंद हानि को प्राप्त होता है. यहाँ तक बात चल रही थी अपनी कल उपाध्याय में. स्वच्छंद महादोष है. स्वच्छंद एक ऐसा दोष है कि जो मोक्ष मार्ग को रोधक है, मोक्ष मार्ग का रोधन करने वाला है, आड़े आने वाला है और संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण स्वच्छंद है. और दूसरे अनेक प्रकार के जो दोष जीव में उत्पन्न होते हैं, इसका मूल भी स्वच्छंद में रहा. इसलिए स्वच्छंद महादोष है. उस स्वच्छंद के कैसे कैसे परिणाम होते हैं उस पर एक प्रकरण लिखा जा सकता है जो संक्षेप में ये प्रयोजन सिद्धि में लिखा है. तो कल हमने इस प्रयोजन सिद्धि में से एक बात लिया था कि मैं समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ, मैं भी बुद्धिमान हूँ, मैंने भी बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत समझ चुका हूँ. ऐसा जो भाव जिसको रहा करता है वह एक प्रकार का स्वच्छंद है. अपनी दशा में निरावरणता नहीं आई, कोई अपूर्वता प्रकट नहीं हुई तो कैसे हो? इसके लिए जिसको जिज्ञासा है, मैंने ओपन माइंडेड है, जो खुला अभिप्राय रखता है कि मुझे ये बात समझ नहीं है कि मैं कैसे अंतर्मुख हूँ, ये विषय मैं नहीं समझा, अंतर्मुख होना चाहिए वहाँ तक समझ आई, लेकिन कैसे होना वो तो परिणमन का विषय है, वो प्रयोग मुझे अभी आता नहीं। जिज्ञासा खुली रहनी चाहिए तो स्वच्छंद नहीं होगा। स्वच्छंद का यही लक्ष्य मैं समझता हूँ, इसका लक्षण क्या है कि जिज्ञासा समाप्त हो जाना। तो मैंने पढ़ा है, जाना है, समझता हूँ, सब कुछ बात मेरे ख्याल में है, तो उसकी सत्संग की और सत सुनने की रुचि रस खत्म हो जाएगा, तो उसको छंद में आ जाएगा। तो मैं भी समझता हूँ। दूसरा स्वच्छंद का परिणाम वो भी है कि सत्पुरुष के वचन में शंका डालना है। ज्ञानी है, इनके वचन अनुभव पूर्ण होते हैं, फिर भी उसमें वो शंका जिसको रहती है। लिखा तो ऐसा है, कहते तो है, किंतु हमको कुछ ऐसा भी लगता है। और कभी कभी सत्पुरुष की भी कहीं भूल होती है, वो देखने की वृत्ति रहती है या होती है। अर्थात कभी विद्वत्ता के अनुसार, विद्वत्ता के कारण कोई गाथार्थ या शब्दार्थ की मुख्यता करके ज्ञानी के वचन में भी कुछ भूल हो सकती है, ऐसी वृत्ति रह जाती है। ऐसी स्वच्छंद वृत्ति कब नहीं होती, इसका समाधान क्या है कि सत्पुरुष के वचन में निशंकता नहीं और उसके वचन में परम प्रीति होना, प्रेम होना। देखिए, संसार में हमारे 2 साल के बच्चे की बात पर हमको प्रेम आता है, उसकी भाषा भी साफ नहीं हुई है, तोतला बोलता है, चोखा नहीं बोलता। 2 साल का बच्चा बराबर बोलता नहीं है, लेकिन थोड़ा भी बोलेगा तो प्रेम क्यों आता है? अच्छे, आज तो ऐसा बोला, पहले तो 2 अक्षर बोलता था, आज 3 अक्षर बोलता है। पहले तो माई बोलता था, अभी पापा बोलता है, 2 शब्द बोलता है। थोड़ा भी बोलता है तो प्रेम आता है। तो सत्पुरुष के वचन के प्रति कितना प्रेम आना चाहिए। ऐसे निशंकता और प्रेम दो बात रहती है तो शंका की गुंजाइश नहीं है। और स्वच्छंद होता है सत्पुरुष में श्रद्धा का अभाव होना, विश्वास नहीं रहना, और उस कारण से अभक्ति के परिणाम होना, ये स्वच्छंद है, महादोष है। उसके लिए इस प्रकार के अभक्ति के और अश्रद्धा के परिणाम को मिटाने के लिए सत्पुरुष को एक प्रगट जीवंत सत, प्रगट सत, जिसने सत प्रगट किया है, सतनाम आत्मा को प्रगट किया है, वो जीवंत सत है, प्रगट सत है, ऐसा जानकर ऐसे पुरुष में अटल श्रद्धा, दृढ़ आश्रय और अतुल भक्ति के परिणाम होने से अश्रद्धा और अभक्ति का स्वच्छंद नहीं होगा। ऐसे स्वच्छंद के जितने भी परिणाम हैं वो कैसे मिटते हैं वो बात साथ साथ इसमें लिया है। विश्वास नहीं होना, सत्पुरुष के बाह्य उदय से, बाह्य परिणमन से शंका होना, अश्रद्धा होना। कभी कृपालु देव थे, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं वितरागता की, और खुद तो पैसे के लिए व्यापार में जुड़े हुए हैं। टाइम होता है गद्दी पर चले जाते हैं बैठ करके, बड़ा कारोबार चलाता है, पैसे के लोभ में ना ऐसा कैसे हो सकता है। और कभी कैसा खाया कभी कैसा खाया, अपने गुरुदेव थे जीते थे, पहले तो पात्रा में जीते थे जब दीक्षा दिया था, बाद में परिवर्तन किया, फिर चांदी के बर्तन में जीते थे। किसमें जीते थे? तो त्यागी को ऐसा क्यों होना? कपड़े तो त्यागी के पहनते थे, गृहस्थ के कपड़े नहीं पहने थे, तो फिर ना क्यों नहीं देते थे कि नहीं हम तो उसमें खाना खाएंगे। श्रद्धा, जब अश्रद्धा होती है तब विश्वास उठ जाता है। किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई उदय देख करके अश्रद्धा होती है और अभक्ति के परिणाम भी, बहुमान फिर नहीं टिकता तो अभक्ति के परिणाम भी हो जाते हैं। उसको पहचान करके, प्रगट सत जान करके, जीवंत सत जान करके, उसका आश्रय और अतुल भक्ति हो गए तो अटल श्रद्धा भी साथ साथ हो गए। और स्वच्छंद के परिणाम हैं, उसमें कुछ लोग सत्पुरुष का विरोध करता है या अवर्णवाद करता है। अवर्णवाद मैंने निंदा, निंदा मैंने जो दोष नहीं है ऐसे दोष का आरोप करना, उसको कहते हैं अवर्णवाद। वो भी एक बहुत बड़ा स्वच्छंद है, बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, आलोचना, आलोचना कहो, निंदा कहो, दोष नहीं हो ऐसे दोष का आरोप करना, ये सब बातें जो है। तो ऐसे परिणामों को हटाने के लिए सजीवन मूर्ति को परम हित का कारण जान करके, मेरे परम हित का कारण है ऐसा जान करके, एक निष्ठा से और सर्वार्पण बुद्धि से उसकी महिमा आना, और आज्ञांकित आज्ञाशीलपणे वर्तन करना और इसके गुणानुवाद करना, अवर्णवाद के सामने गुणानुवाद करना, इस प्रकार के परिणाम से तो अवर्णवाद का जो स्वच्छंद है वो मिटाया जा सकता है। और मंद स्वच्छंद में वो तीव्र स्वच्छंदमय वर्णवाद भक्ति होता है, लेकिन स्वच्छंद थोड़ी मंद होती है तो भी स्वच्छंद होता है। आखिर में वो स्वच्छंद की जात कैसे होती है कि सत्पुरुष की वाणी अपना चैतन्य स्वभाव को स्पर्श करके निकलती है, ऐसी वाणी का प्रत्यक्ष श्रवण होने पर भी उसकी महिमा नहीं आना, उसका अहोभाव नहीं होना, यानी उसकी उपेक्षा हो जाना या उत्साह नहीं आना, निरुत्साहपना रह जाना, ये स्वच्छंद के कारण से ऐसे परिणाम होता है। इस प्रकार के परिणाम मिटाने के लिए अत्यंत महिमापूर्वक और अत्यंत जिज्ञासा में रह करके सत्श्रवण करना, अथवा श्रवण काल, श्रवण का समय जो है उस काल में वो वाणी मुमुक्षु के अंतरंग को स्पर्श करेगी, तब उनको लगेगा कि ये वाणी है, उसमें कोई अपूर्व बात है, अपूर्व बात है, और उसको सुनने की बार बार जिज्ञासा और अपेक्षा रहेगी, उपेक्षा नहीं होगी। इस प्रकार उपेक्षा के परिणाम को अपेक्षा के परिणाम में बदला जाता है तो ये स्वच्छंद मिट जाता है। और सत्पुरुष के प्रति जितनी विनय भक्ति होनी चाहिए उसमें न्यूनता, कमी होना, और मुझे भी आता है ऐसा भाव रह जाना, इसी कारण से ये जीव का स्वच्छंद है, और उसको मिटाने के लिए सत्पुरुष की अंतरंग दशा को पहचान करके परम दैन्यत्व यानी परम विनय में रहना और अपनी लघुता का सभानपना आ जाना, यही कारण से भी उक्त प्रकार का स्वच्छंद मिटता है। सत्पुरुष के चारित्र दोष का लक्ष्य रहना या लक्ष्य रहना और उसकी मुख्यता होना, वो भी स्वच्छंद में जाता है। साधक होते हैं तो पूर्ण शुद्ध नहीं होते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसी वाणी वैसा वर्तन होवे तब तो हम माने के बराबर बात करते हैं, लेकिन किसी भी साधक के ऐसा नहीं होता। साधक की वाणी अपना साध्य की बात करेगा, लेकिन वो साधक है, साध्य तक पहुंचा नहीं है, इसलिए तो साधक है। साध्य तक पहुंचने से तो सिद्ध हो जाता, तो वाणी और वर्तन में तो अंतर रहेगा ही रहेगा साधक दशा में। और वो किस कारण से रहेगा कि चारित्र दोष के कारण से, श्रद्धा का दोष नहीं होता। ज्ञानी में, सत्पुरुष में श्रद्धा ज्ञान का दोष नहीं होता, दोष होता है पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण से चारित्र में दोष होता है। फिर भी मिथ्या चारित्र नहीं होता, अचारित्र होता है। इनका लक्ष्य जाना और उसकी मुख्यता रहना, ये स्वच्छंद है, इसके लिए सत्पुरुष के अंतरंग अलौकिक चारित्र के लक्ष्य में लेकर पुरुषार्थ की प्रेरणा होना। उसका अंतरंग को देखेगा तो उसको पुरुषार्थ दिखेगा, और पुरुषार्थ दिखेगा तो नतमस्तक हो जाएगा। ऐसा अंदर में पुरुषार्थ चलता है। तो फिर और सब छोटे जो चारित्र के दोष है, अल्प दोष है, वो गौण हो जाएगा। और एक स्वच्छंद का प्रकार वो भी है कि लोक भय के कारण से, समाज भय के कारण से, अपकीर्ति भय के कारण से, अथवा अपमान भय के कारण से सत्पुरुष की उपेक्षा होना या विमुखता होना, ये स्वच्छंद है। तो हमारे समाज में हमारी बड़ी इज्जत है, अब हम इस ज्ञानी के पास जाएंगे तो समाज क्या कहेगा? लोक भय होना, अपनी जो अभी तक इज्जत है उसमें फर्क हो जाएगा, या कुछ कोई अपमान भी करेगा। तो सहन करके भी अगर हम जाते हैं तो स्वच्छंद नहीं है, लेकिन वो सहन करने की शक्ति नहीं है तो स्वच्छंद खड़ा हो जाता है, क्योंकि उपेक्षा हो जाती है समाज के कारण से, उपेक्षा होती है। इसलिए समाज को गौण करके मान अपमान के मुद्दे को भी गौण करके, सत्समागम को परम हित का कारण जान करके उसकी उपासना करना, सत्समागम में रहना जाना, ये स्वच्छंद मिटाने का एक साधन है। और सत्पुरुष से भी कुटुंब परिग्रह आदि प्रति अधिक राग हो जाना, ये भी एक प्रकार का स्वच्छंद है। पर प्राय ऐसा ही होता है, लड़की के शादी में जो खर्च करेगा वहां फंड फाला नहीं करेगा, करेगा क्या? लेकिन कोई धार्मिक प्रसंग होगा तो पहले इसका लिखो, पहले इसका लिखो, पहले फिर बाद में मेरा मैं बताऊंगा, उसमें फंड फाला से काम करेगा। तो परिस्थिति कुछ भी हो, अधिक अनुराग देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष के प्रति होना चाहिए मुमुक्षु को। और ये राग कुटुंब परिग्रह भी राग से भी अधिक होना चाहिए, ये इसका परिमाण है, तभी उसका मूल्यांकन हुआ है ऐसा मानना है। तब तक मूल्यांकन नहीं हुआ है। हाँ, इस प्रकार का स्वच्छंद है। बहुत बहुत प्रकार के परिणाम है स्वच्छंद के, पर यही कारण तो सत्श्रवण मिलने पर वो ज्ञान क्यों नहीं चढ़ता है? ये ज्ञान तो मिलता है, ज्ञान चढ़ता क्यों नहीं? कि जीव स्वच्छंद में खड़ा है, दूसरा अपनी कल्पना के अनुसार अथवा अपने समान सत्पुरुष का और इनका वचन का तोलन करना और उसको लौकिक अर्थ में अर्थ घटाना, लौकिक भाव में ले जाना, अथवा वो कोई बात करते हैं तो उसको अतिशयोक्ति में गिनना, भावावेश में गिनना, अथवा अजागृत उपयोग से बोला होगा या बोल दिया होगा, बात बात में ऐसा बात हो गई होगी, ऐसा गिन लेना, ये भी एक प्रकार का स्वच्छंद है।
अजागृत
उपयोग ऐसा ज्ञानी में होता नहीं है। वो कुछ कहते हैं, लिखते हैं, जागृत उपयोग से बोलते हैं, उपयोग पूर्वक बोलते हैं, अनुपयोग से नहीं बोलते हैं। उपयोग कहीं हो और बोल दिया हो ऐसी बात नहीं, सावधानी है, जागृत है। वो
एक एक शब्द में आनंद जागृत है, एक एक शब्द में आनंद आगम।
हाँ, वो तो लिखे ज्ञानी के एक शब्द में अनंत आगम भरा है। तो ऐसे स्वच्छंद को मिटाने के लिए ज्ञानी के वचन को अलौकिक अर्थ में अर्थ घटन करना, लौकिक अर्थ में नहीं ले जाना, उसके वचन में रहा हुआ परमार्थ को समझने के लिए दृष्टिकोण को ग्रहण करना। तो परमार्थ क्या है उसमें, शब्दार्थ भावार्थ उतना नहीं जाना, परमार्थ पर जाना कि आत्मकल्याण का रहस्य क्या है इसमें, और उसके वचन में रही हुई सन्मार्ग की गंभीर विधि, सन्मार्ग की विधि का गंभीर रहस्य को गहन चिंतन से खोजना। भले ही सीधा पता नहीं चले तो भी खोज रखना कि मार्ग की विधि की गंभीरता कैसी है इनके वचन में, ऐसी खोज करना। तो अन्यथा प्रकार के स्वच्छंद के परिणाम नहीं होंगे। और एक स्वच्छंद का प्रकार वो है कि सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग होने पर भी कोई शास्त्र स्वाध्याय को अधिक महत्ता दे करके प्रत्यक्ष सत्संग को गौण करता है, ये भी जीव का स्वच्छंद है। इसमें ऐसी गिनती होती है कि हमारे जो शास्त्र है, आगम है, वो तो बड़े बड़े आचार्यों का लिखा हुआ है, वो तो सप्तम गुण छठे सप्तम गुण स्थान वालों का वचन है, शास्त्र है वो मुनियों का, आचार्यों का, वो तो छठे सातवें गुण स्थान वाले का है, और ये सत्संग तो चतुर्थ गुण स्थान वाले को मिल रहा है, तो हमको तो ऊपर वाले का ही वचन को पहले प्राधान्य देना चाहिए ना, महत्व देना चाहिए ना। तो बहुत बड़ी भूल है उसमें। किस प्रकार की भूल है, गिनती में तो सीधी बात लगती है, लेकिन भूल कैसी हुई कि ये प्रत्यक्ष वचन मिल रहा है प्रत्यक्ष योग में, और शास्त्र के वचन परोक्ष है। शास्त्र है योग्यता के लिए, पात्रता के लिए पढ़ा जाता है, परंतु मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए तो प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग चाहिए ही चाहिए। वो कोई शास्त्र में से पकड़ सके वो बात नहीं है, मोक्ष मार्ग का पता ऐसे नहीं चलता, क्योंकि प्रयोग भाषा में आता नहीं। प्रयोग तो प्रयोग को दिखाने से समझ में आता है, क्या दिखने से समझ में आता है, भाषा से समझ में नहीं आता है। ये साइकिल पे बैलेंस रखना कौन सी किताब में उसकी विधि आएगी, उसके लिए खुद को प्रयोग करना पड़ेगा। भले ही दो चार दफे गिर जाए, लेकिन गिरते गिरते वो चलाते सीख जाएगा। रोटी पे बैलेंस फिराना उतना आता है, लेकिन बैलेंस रख के फिराना वो कहाँ से आएगा, उसका विवरण आ सकता है कि नहीं? वो तो उसका प्रैक्टिस ही उसको सिखाती है कैसे बैलेंस रखा जाता है। तो प्रयोग का विषय तो प्रयोग से ही समझ में आता है, सीखने में आता है, तो परिभाषा से समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बात परिभाषा में भाषा में पूरी आ ही नहीं सकती, पूरी बात आती नहीं है, आउटलाइन आती है तो बात अधूरी है वो। और प्रैक्टिस से समझ में आवे वो इसकी अंडरलाइन है, तब बात पूरी होती है, आउटलाइन से बात पूरी नहीं होती है। अंतर्मुख होना आउटलाइन है, कैसे होना वो तो प्रयोग का विषय है, परिणमन का विषय है, वो तो अंतर्वृत्ति जागृत होवे आवाज नहीं आती। हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष युग में रहना होता है, ठीक बात है। या तो मुद्दा वो चलता है कि उसको गौण करके शास्त्र स्वाध्याय को मुख्य करता है, वो जीव का स्वच्छंद है, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय से भी ये बात कृपालु देव ने 661 नंबर के पत्र में दिया है। शास्त्र स्वाध्याय से भी सत्पुरुष का समागम अधिक उपकारी जानना समझना और उसको मुख्य करके उपासना करना। और सत्पुरुष के उपकार को छिपाना तो भी जीव का पसंद है, या सत्पुरुष के उपकार को ओलोवा हिंदी में क्या बोलते हैं जो थापन को नहीं देते हैं, जैसे कोई थापन ओलवे से ना, ओलवे मैंने क्या तो खास शब्द है हिंदी में, तो गोपन सिद्धि हिंदी है, गुजराती अच्छा अच्छा। अथवा अपना अप्रसिद्ध गुरु को, गुरु के नाम को छिपा करके अपना मान बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध ज्ञानी का नाम लेना, नाम लेने में वास्तव में जिससे लाभ हुआ उसका नाम नहीं लेना, इस प्रकार का अपना मान बढ़ाने के लिए कोई प्रवृत्ति होता है, कोई एक प्रकार के परिणाम होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो स्वच्छंद के द्योतक हैं। इसलिए सत्पुरुष रूप गुरु के उपकार को अगोप्य भाव से प्रसिद्ध करना और इसके उपकार को सर्वोत्कृष्ट महिमा से कहना गाना, तो ये स्वच्छंद नहीं होगा।
लेकिन जिसको सत्पुरुष के प्रति उपकार आया हो उसको किस प्रकार का परिणाम नहीं मिल सकते?
होगा नहीं, लेकिन कभी कभी स्वच्छंद होता है तो हो जाता है, मैं ऐसा कहता हूँ। ये बात आ जाती है जबकि उसने अपने गुरु से वो बात समझी है, लेकिन मैं कहता हूँ वो बात भी मानार्थ है, हो जाती है।
लेकिन ये वाला बात तो अगर उपकारी लगा होगा तो ये बात तो बनेगी नहीं ना।
कभी
उपकारी के का उपकारी का अगर लगा तो सब तो भगवान का ही
है। कभी कभी जीव स्वच्छंद में आ जाता है तो परिणाम भी क्या हो जाता है इसका ठिकाना नहीं रहता। ये मुमुक्षु की भूमिका बहुत कच्ची होती है, कभी क्या परिणाम हो जाए, इसलिए जो अनेक उसके भेद प्रभेद हैं संभवित वो यहाँ पर दिए गए हैं। संभव है उतनी सी बात,
उपकारी लिया ना यहाँ पर, उपकारी लिया ना
क्या
उपकारी के प्रति के ऐसे परिणाम तो नहीं हो सकते?
उपकार को कोई छिपाता है ऐसा भी कर लेता है, ऐसा भी होता है। खास करके मान कसाई के कारण ये ऐसी बात होती है। स्वच्छंद है वो प्रकृति के अनुसार मान की प्रकृति में जाता है, कोई गाथा है ना आत्मसिद्धि में कि स्वच्छंद बड़ा दोष है, जाता सत्पुरु मानादिक शत्रु महा निज छंद न मरा है, निज छंद मैंने स्वच्छंद वो नहीं मराता, वो सत्पुरुष के चरण में जाते हैं, अल्प प्रयास में जाता है। उतना सुनाई नहीं देता है यहाँ तो, यह जगह अजागृति की बात नहीं चली। किसकी अजागृति?
अजागृत उपयोग है
वो तो सत्पुरुष को ऐसे मानना कि अजागृत उपयोग से लिखा है, लेकिन होता नहीं है, वो तो अजागृत उपयोग होता नहीं है, मुमुक्षु की बात नहीं है। इस प्रकार के स्वच्छंद को मिटाने के लिए सत्पुरुष के उपकार को प्रसिद्ध करना, छिपाना नहीं, और उसका सर्वोत्कृष्ट महिमा करना, महिमा करना अपना नहीं लिया है, सर्वोत्कृष्ट महिमा करना, तो उतना तो अन्य मत में भी आता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुराज की जिसने गोविंद दियो बताए हैं, सर्वोत्कृष्ट महिमा प्रसिद्ध करना है। हाँ, कार्य भी उपकार भी सर्वोत्कृष्ट हुआ ही है।
हाँ,
एक पत्र पूछा है 527 से ज्यादा कार कि 13वें गुणस्थान के में विराजमान तीर्थंकर आदि की प्रतिमा की भक्ति कोई करे और प्रत्यक्ष सत्पुरुष की कोई भक्ति करे तो अधिक लाभ किस परिणाम से होता है, ऐसा एक प्रश्न पूछा है सुभाग भाई को। क्योंकि वो परोक्ष हैं, तीर्थंकर आदि परोक्ष हैं, भले ही ऊपर के गुण स्थान में विराजमान है, पर ये प्रत्यक्ष हैं। जो प्रत्यक्ष से सलाह लाभ होता है वो परोक्ष से कभी नहीं होता। प्रश्न पूछा है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। और संप्रदाय यानी परंपरा चलाने के लिए तत्व प्रचार और प्रभावना की प्रवृत्ति करना किस हेतु से, हमारे संप्रदाय में और हमारे परंपरा में ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति होती है, इस कारण से कोई तत्वज्ञान का प्रचार और धर्म प्रभावना की प्रवृत्ति करना और उस प्रवृत्ति करते हुए सत्पुरुष के आज्ञा की अवगणना करना, वो जीव का स्वच्छंद है। क्योंकि वो लोक दृष्टि में रह करके प्रवृत्ति होती है, इसलिए ऐसे स्वच्छंद को मिटाने के लिए लोक दृष्टि से दूर, लोक दृष्टि को दूर करके ज्ञानी की आज्ञा को अथवा परमार्थ के लक्ष्य सहित आत्मकल्याण का लक्ष्य रख करके धर्म प्रभावना या तत्व प्रचार के कार्य को करना, जिसमें बाह्य कार्य में अंतरंग निज हित की खटक रहनी चाहिए साथ साथ, वरना पूरी प्रवृत्ति में उलझ जाएगा, पूरी बाह्य प्रवृत्ति में उलझ जाएगा, वो खटक रहनी चाहिए साथ साथ, यथार्थता में वो रहती है। और एक स्वच्छंद का परिणाम है कि ग्रंथ संबंधी व्याख्यान, किसी भी ग्रंथ पर मेरा मास्टरी है, इस ग्रंथ पर मेरा मास्टरी है, तो बहुत अच्छा व्याख्यान इस विषय पर कर सकता हूँ, या लेखन की कुशलता, तो उसमें एक्सपर्ट हो, निपुण हो, तो कोई लेखक होता है, कोई वक्ता होता है, कोई वक्ता लेखक दोनों होता है, एक ही व्यक्ति में लेखक भी होता है और वक्ता भी होता है। उसकी जो निपुणता है, कला है, बोलने की कला है, लिखने की कला है, इसकी महत्ता दर्शाने की इच्छा रहना, देखो मैं कैसा अच्छा अच्छा लिख सकता हूँ और मैं कैसा सबसे अधिक अच्छा व्याख्यान भी कर सकता हूँ, यानी पूर्व आचार्यों प्रणीत उच्च कोटि के अध्यात्म का न्याय बतलाते समय अपनी महत्ता दिखाने का अभिप्राय रह जाना। तो देखो मैं कितनी उच्च कोटि की बात करता हूँ, बात तो है आचार्य की, लेकिन उच्च कोटि की बात मैं बतलाता हूँ, इसमें अपनी महत्ता आ जाती है। वक्ता और लेखक के को लागू पड़ता है, सर्व सामान्य को नहीं लागू पड़ता है ये स्वच्छंद। तो जो वक्ता और लेखक होता है उसमें ऐसा स्वच्छंद नहीं होवे, इसके लिए वो बात लिखी गई है। तो ऐसा स्वच्छंद मिटाने के लिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि शास्त्र का व्याख्यान करता हो, ऐसी प्रवृत्ति हो, या कोई लेख संबंधी प्रवृत्ति हो और उसमें अपनी कुशलता भी हो, फिर भी ऐसे कार्यों में अपने गुरु का उपकार को मुख्य करना, तो मेरे में तो कुछ नहीं था, ये तो मेरे गुरु की देन है, मेरे में कुछ नहीं था, मैं तो एबीसी भी नहीं जानता। तो फगानी जी ने एक दफा बोला कि आपकी चर्चा में बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छी चर्चा चलती है आपकी, तो ठीक है, ये तो गुरुदेव की प्रसादी है, मैं तो एबीसी भी नहीं जानता था। क्या बोले, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। ऐसे महापुरुष के उपकार को प्रदर्शित करना और आध्यात्मिक न्यायों समझने में जो आत्मलक्ष्य रहा हो, वैसे ही भाव से स्वलक्ष्य पूर्वक उसका प्रतिपादन करना, तो उसका अपना अपनी महत्ता दर्शाने का जो विकृत भाव है, पछंद भाव है, वो पैदा नहीं होगा। उस न्याय को समझने के काल में आत्मलक्ष्य जो रहा हो, उसी लक्ष्य पूर्वक उसका निरूपण करना, यानी उच्च कोटि के आध्यात्मिक न्याय है तो बताते वक्त स्वलक्ष्य की मुख्यता होना, वरना परलक्ष्य में अपनी अधिकाई दिखाने की बात आ जाएगी, महत्ता दिखाने की बात आ जाएगी, जो एक प्रकार का स्वच्छंद है। ये बात तो वक्ता और लेखक के लिए है, अब कुछ बात श्रोताओं के लिए भी है कि सत्शास्त्र का अविनय होना, सत्श्रवण की उपेक्षा होना, अतः सत्श्रवण में अनियमितता होने, क्या होता है कि शास्त्र स्वाध्याय चलता है पर अपना मन चाहे तब एंट्री होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक विनय की प्रथा ऐसी है कि पहले हम शास्त्र सभा में उपस्थित हो जाएं, बाद में शास्त्र जी को सिर पे रख करके विराजमान करें और शास्त्र सभा पूरी होवे, जिनवाणी की स्तुति होवे, बाद ही सब विसर्जन होवे। लेकिन क्या है, हमको काम इतना ज्यादा रहता है कि जिनवाणी की स्तुति में हम नहीं रह सकते, शास्त्र सभा में भी बहुत बहुत कोशिश से इतना टाइम निकालते हैं। शास्त्र स्वाध्याय पूरा हुआ कि भागा दौड़ी चालू, अभी नहीं होता है, उनको ज्ञान नहीं चढ़ता क्योंकि स्वच्छंद में खड़ा है। इसलिए शास्त्र जी को सम्यक ज्ञान का निमित्त जान करके स्वाध्याय में, शास्त्र सभा में नियमित रहना, उपस्थिति भी नियमित रहनी, कभी कोई परवशता से देर सवेर हो जाए अलग बात है, परंतु रोजाना डेली रेगुलरली अनियमित रूपाना, ये तो शास्त्र जी का अभिनय है और शास्त्र लिखने वाले ज्ञानी पुरुष या गुरु का भी अभिनय है, उसको ज्ञान कभी चढ़ता नहीं है। तो ऐसे ऐसा भी स्वच्छंद होता है। हम एक वक्ता के लिए स्वचन दिया है कि शास्त्र जी के विषय प्रतिपादन को छोड़ करके विषयांतर में प्रवृत्ति की पद्धति जो होती है ये वक्ता का शास्त्र प्रतिकार भी नहीं है। इसलिए गुरुदेव हमेशा शास्त्र को सामने रखते थे कि उसमें जो महापुरुष के पूर्वाचार्य के वचनामृत हैं उन्हीं का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे और हमारा भाषण कोई और विषय पर चला जाए तो ये उपयोग का कोई ठिकाना नहीं है, तो शास्त्र जी का अभिनय होता है, स्वच्छंद होता है। इसलिए वक्ता को शास्त्र विषय को छोड़कर के विषयांतर नहीं हुए उसकी जागृति, उसका उपयोग, उसकी सावधानी रहनी चाहिए। आप कहेंगे कि हम तो वक्ता है नहीं, इन बात से हमारा क्या प्रयोजन? नहीं, श्रोता को भी कैसे वक्ता को सुनना वो अपना प्रयोजन होता है। जो विषयांतर कर जाता है वो तो वक्ता के लायक नहीं। तो परीक्षा करने के लिए प्रयोजन होता है। और सर्वज्ञ वितराग की जो प्रतिमा है पर्यंत देव की, उसमें विकृति करना तो वितराग मुद्रा होती है। शांत शांत अंतर्मुख वितराग मुद्रा है, उसमें कोई विकृति कर देना अथवा उसके स्थापना का निषेध कर देना, ये जीव का स्वच्छंद है। तो इसके पीछे क्या अभिप्राय है स्वच्छंद मिटाने के लिए? कि सर्वज्ञ वितराग की प्रतिमा जी स्वसंवेदन को दिखाने का एक कारण है। क्या बात है? वितराग प्रतिमा में स्वसंवेदन दिखता है, अंतर्मुखता दिखती है, वितरागता दिखती है। ऐसा कारण जान करके ऐसे भावों में विकृति नहीं होनी चाहिए प्रतिमा जी में। और अभिप्राय ऐसे अभिप्राय पूर्वक स्व पर हितार्थ है उसकी स्थापना और अनुमोदना जीव को करनी चाहिए कि ये स्वसंवेदन को दिखाते हैं। जिनेन्द्र दर्शन पर हमने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें ये बात लिखी है कि जैसे कहीं बात ऐसी, उपदेश की बात ऐसी होती है कि जो सुनने से नहीं लगता उपदेश वो दिखाने से लगता है। एक दृष्टांत लेते हैं कि एक बच्चा है 3-4 साल का, वो बाल मंदिर में जाता है, उनको रंग का कलर का ज्ञान कराना है तो गुलाबी रंग का ज्ञान में उनका टीचर है, वो सिखाएगा कि गुलाब को गुलाबी रंग होता है इसलिए इस रंग का नाम गुलाबी है। क्या गुलाब को गुलाबी रंग होता है? बच्चा क्या समझेगा इसमें? रंग सुनने की चीज है या देखने की चीज है? वही टीचर उसको गुलाब दिखा दे तो देखो बच्चे ये जो गुलाब है इसका रंग है वो गुलाबी है, इसलिए ऐसे रंग को गुलाबी रंग कहते हैं। वो बच्चा अपने जीवन में गुलाबी रंग को भूलेगा नहीं, सीख जाएगा कि गुलाबी रंग कौन सा होता है। क्या मतलब हुआ? कि जो देखने की चीज है वो सुनने की नहीं है, ऐसे वितरागता है, अंतर्मुखता है, तो संवेदनपना है, वो देखने की चीज है, वो ग्रंथों से मालूम नहीं पड़ती। उसके लिए उसकी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गए तो वो बात समझ में आ जाती है। इसलिए जैन परंपरा में ज्ञानियों ने इसकी स्थापना की है, उसका निषेध करना नहीं चाहिए। और एक प्रकार का स्वच्छंद है, बारह अंग के सार, बारह अंग का सार शुद्ध आत्मानुभूति है। बारह अंग का सार क्या है? भगवान की वाणी का शुद्ध आत्मानुभूति। ऐसी आत्मानुभूति के प्राप्त जो सत्पुरुष है उनके एक वचन में अनंत आगम रहा हुआ है, लिया है सब बात लिया है, इसके एक वचन में अनंत आगम रहा है। ऐसा होने पर भी उनको वचन, इनके वचन, इसके वचन को सम्मत करने के लिए हम दूसरे आगम के आधार का आग्रह रखते हैं, वो हमारा स्वच्छंद है। गुरुदेव ने भले कहा, उस आगम में कहा लिखा है, ये स्वच्छंदी जीव का काम है, वही जीवंत आगम है, फिर दूसरा आगम की कोई जरूरत नहीं। तो उसके सामने हमारी समझ क्या होनी चाहिए? कि ज्ञानी के प्रत्येक वचन में अनंत नयों की संधि रही हुई है। कैसे? कि अनंत नयों का स्वामी न्यायाधीश कौन है? अपनी आत्मा। अनंत नयों का स्वामी जो न्यायाधीश है अपना आत्मा है, अनंत ज्ञान का भंडार, उसका अवलंबन से जो वाणी निकलती है उसमें अनंत नयों की संधि आ जाती है। संधि मैंने कोऑर्डिनेशन होता ही है। ऐसा जान करके इसके अर्थ गांभीर्य को सम्मत कर लेना, लेकिन कभी वचन में शंका करना नहीं, यानी असम्मत नहीं करना, स्वच्छंद से उसको असम्मत करके कोई आगम का आधार ढूंढना, ये जीव का स्वच्छंद है। और एक आत्मसिद्धि की ग्यारहवीं गाथा पर बात लिया है कि प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। ये जो ग्रंथ है जिनवाणी है, लेकिन प्रत्यक्ष सदगुरु के बराबर में इसका उपकार नहीं होता। ऐसा एवो लक्ष्य थया बिना, ये बात लक्ष्य में आए बिना, उगे न आत्म विचार, उसको आत्म कल्याण का विचार नहीं उगता। इस गाथा अनुसार प्रत्यक्ष सत्पुरुष का उपकार या भक्ति नहीं होकर के गुणस्थान आदि का नाप से, गुणस्थान आदि को मुख्य करके भक्ति में न्यूनता करना, कि ये तो चतुर्थ गुणस्थान वाले हैं, जिनेंद्र तो तेरहवें गुणस्थान वाले हैं, अथवा अभक्ति होना, अथवा परोक्ष अन्य ज्ञानियों को ज्ञानियों की प्रत्यक्ष ज्ञानी के साथ तुलना कर लेना, ये भी जीव का स्वच्छंद है। वो प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद को नहीं समझता कि प्रत्यक्ष की असर कितनी आती है। हजारों ग्रंथ पढ़ने पर जो असर नहीं आती है वो एक घड़ी के सत्संग में आ सकती है प्रत्यक्ष में। ऐसा प्रत्यक्ष योग का बल होता है। वो बात को जो नहीं समझते उनको परोक्ष बड़े बड़े ज्ञानी के वचन की महत्ता रहती है और प्रत्यक्ष योग को वो खो देता है। इस प्रकार का स्वच्छंद भी
बड़ी आधी गरीब होता
है। हाँ हाँ होता है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा स्वच्छंद मिटाने के लिए प्रत्यक्ष सत्पुरुष का उपकार उक्त गाथा अनुसार समझ करके, सर्वाधिक उपकारी समझ करके इनके चरणों की विनय उपासना करनी। अब आखिर का एक भेद है, प्रत्यक्ष ज्ञानी की अतिशय भक्ति को निमित्त प्रधानता समझ लेना। हमको तो उपादान वाली बात चाहिए, ये तो निमित्त प्रधानता की बात होगी। प्रत्यक्ष ज्ञानी की अतिशय भक्ति कोई करता है तो वो तो निमित्ताधीन परिणाम हो गया। ऐसी बात को समझना वो स्वच्छंद है। सजीवन मूर्ति का प्रत्यक्ष योग, प्रत्यक्ष समागम का फल आनंद भाव का छेद जान करके, उपादान में पुरुषार्थ की जागृति रख करके अनन्य भक्ति के परिणाम होने चाहिए। और उसमें राग गौण है, ज्ञान की प्रधानता है, मूल्यांकन है उसमें प्रत्यक्ष योग का, इसलिए वो निमित्ताधीन दृष्टि में नहीं ले जाना चाहिए और उस प्रकार का स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के अनेक भेद हैं स्वच्छंद के, तो जीव को मोक्ष मार्ग में अवरोधक है समझ करके अपने को जो लागू होता है वो छोड़ देना चाहिए। कोई भेद सब भेद सबको लागू नहीं होता है, कोई जो भी भेद अपने को लागू होता है वो समझ करके छोड़ देना चाहिए।